आभा बच्चों के साथ चुस्की गोला का कंपटीशन कर रही थी। तभी एक लड़की गोला खत्म करके चिल्लाते हुए बोली, दीदी मैं तो जीत गई, देखो मेरा गोला खत्म हो गया लेकिन आपका अभी बाकी है, आप हार गई। ऐसा कहते हुए बच्चे हंसने लगे। आभा ने गुस्से में अपनी बर्फ का टुकड़ा गिलास में फेंकते हुए कहा, नहीं तुमने चीटिंग की है, रुको मैं अभी एक और गोला लेकर आती हूँ, हम फिर से कॉम्पिटिशन करेंगे और इस बार मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए आभा ने अपने बर्फ के टुकड़े को अपने मुंह में रखा। उसके होठ बाहर बतख की तरह निकल आए और बिल्कुल किसिंग के स्टाइल में वो बर्फ को चूसते हुए पीछे पलटी। ठीक उसी समय उसके नाक के ठीक सामने विक्रम खड़ा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। विक्रम को अपने सामने देखकर आभा एक पल के लिए चौंक गई। उसकी आंखें टिमटिमाने लगी। वो बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए विक्रम को देख रही थी, लेकिन विक्रम की नज़र सिर्फ आभा के होठों पर थी। जिस तरीके से उसने अपने होठ निकाले हुए थे, कोई देखता तो ऐसा लगता जैसे वो किसकी डिमांड कर रही हो। विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आभा के कान के पास झुकते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों को हो सकती है, वैसे तुम चाहो तो हम कहीं अकेले में जाकर ये कर सकते हैं। आभा के मुंह में जो बर्फ का टुकड़ा था, विक्रम की बात सुनकर वो अचानक से अटक गया और उसे खांसी आने लगी। वो विक्रम को हैरानी और गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, एक तो मेरा गेम बिगाड़ दिया, ऊपर से यहाँ खड़े होकर भाषण दिए जा रहे हो, हटो मेरे रास्ते से। तभी एक बच्ची आभा के पास आकर पूछी, दीदी ये कौन है? आभा ने मुंह बनाते हुए विक्रम की ओर देखकर बोली, कनखजूरा। क्या मैं तुम्हें कनखजूरा नजर आता हूँ? विक्रम ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए पूछा। आभा ने अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए और जबरदस्ती मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, जो कानों में खुशर खुशर करते हैं उसे कनखजूरा ही कहते हैं। विक्रम बस हैरानी से उसकी बात सुनता रह गया। आभा उसके बगल से निकलकर चली गई, पर जाने से पहले उसने अपने बालों को हवा में स्टाइल में घुमाया और अपनी नाक पर एक उंगली रगड़ी। उसकी ये सदा पर विक्रम फिदा हो गया। विक्रम उसे बच्चों के साथ जाते हुए देखता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, तुम अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो, उम्र में भले ही बड़ी हो गई हो लेकिन दिल अभी भी बच्चों जैसा ही है, तुम्हारी यही मासूमियत हर बार मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। तुम्हें पता नहीं आभा, मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ, तुम्हारी मासूमियत, भोलापन और ये बचपना, ये सब मुझे तुम्हारी ओर खींचते हैं, लेकिन मैं खुद को रोक कर रखा हुआ हूँ, क्योंकि तुम आस्तिक की बहन हो, मैं आस्तिक के साथ अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता, इसलिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं तुम्हारे सामने अपने दिल का हाल रख सकूँ। विक्रम तो यहाँ अपने दिल में आभा के लिए फीलिंग सजाए बैठा था, वहीं दूसरी तरफ आभा इन सबसे बेखबर अपनी ही दुनिया में मस्त थी। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि पार्टी के एक कोने में किसी की तीखी निगाहें विक्रम पर टिकी हुई थी। बेला इस समय बार काउंटर पर बैठी थी और उसके साथ उसकी दोस्त जूली थी। जूली ने विक्रम पर नजर डालते हुए कहा, हैंडसम है लेकिन तेरी तरफ देखा भी नहीं, इसीलिए तो ये मुझे इतना पसंद है। बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इसकी पसंद मैं नहीं हूँ, तुझे पता है बचपन से मैंने विक्रम को ऐसे ही देखा है, वो हमेशा चीजों को चुनने में समय लगाता है, भाई के बाद अगर किसी में वो बात है जो मेरे टैंट्रम को बर्दाश्त कर सके तो वो सिर्फ विक्रम खंडेलवाल है, ये बंदा जितना खुद को लोगों से दूर रखने की कोशिश करता है उतना ही मेरी नजर से नहीं बच सकता, एक दिन इसे मैं हासिल करके रहूंगी, बस मुझे सही वक्त का इंतजार है। आभा अभी भी बच्चों के साथ थी और उसके हाथों में आइसक्रीम के कप थे। वो कप से आइसक्रीम खाते हुए सामने चल रही पार्टी को देख रही थी। लोगों के दिखावे भरे चेहरे और दुनिया उसे नापसंद थी। वो इस दुनिया का हिस्सा ना कभी बनना चाहती थी और ना ही बनना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो कभी अपने परिवार से अलग नहीं होगी, बस उसी वादे को निभाने के लिए वो इस परिवार का हिस्सा बनी हुई थी। पर यहाँ सिर्फ उसकी भाभी से लगाव था और किसी से नहीं। दूसरी तरफ पार्टी की गैलरी में जहाँ आस्तिक और अरुणिमा थे, आस्तिक वहाँ से जाने ही वाला था कि अरुणिमा ने धीरे से कहा, मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। आस्तिक के कदम वहीं रुक गए। उसने गहरी सांस ली और गुस्से में सख्त चेहरे के साथ अरुणिमा की तरफ देखा। वो उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, दोबारा ये गलती मत करना, कभी भी मुझे पलट कर जवाब देने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी जुबान तुम्हारी हलक से खींच कर निकाल दूंगा। जब तुम्हें बोलने के लिए कहा जाए तभी मुंह खोलना, वरना इसे बंद ही रखना, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, क्योंकि गुस्से में मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ और मुझे तुम्हें मारने का रत्ती भर भी अफसोस नहीं होगा। अरुणिमा डरी हुई नजरों से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक की निगाहें इस समय किसी बीस्ट से कम नहीं लग रही थी। उसने धीरे से अरुणिमा की गर्दन पर हाथ रखकर उसे सहलाना शुरू किया। अरुणिमा ने डरते हुए आस्तिक की कलाई को देखा, कहीं वो सच में उसका गला न दबा दे, लेकिन वो बस उसके गले को अजीब तरीके से सहलाते हुए उसे धमका रहा था। इस वक्त अरुणिमा की नजर आस्तिक के हाथ पर बने उस टैटू पर गई। दिल के अंदर बना हुआ वो एक शब्द अरुणिमा को सोचने पर मजबूर कर रहा था। ये टैटू उसने शादी से पहले भी आस्तिक के हाथों पर देखा था, शादी की रस्मों के बीच भी उसकी नजर इस पर पड़ी थी। क्या ये आस्तिक के नाम का अल्फाबेट था या कुछ और? अरुणिमा हर बार इसे देखकर सोचने पर मजबूर हो जाती थी। अरुणिमा का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि आस्तिक के कठोर हाथ उसकी गर्दन पर घूम रहे थे। वो हाथ अरुणिमा को घनाने में कामयाब हो रहे थे।
कहीं अगले ही पल आस्तिक उसकी गर्दन न मरोड़ दे। यही सोचते हुए उसका पूरा शरीर एक अकड़न से झकड़ा हुआ था। आस्तिक अपने अंगूठे से उसकी गर्दन सहलाते हुए धीरे से बोला, समझ में आया मैंने तुमसे क्या कहा माय डियर वाइफ? अरुणिमा डर गई। उसके सामने इस दानव को देखकर वो जल्दी से सिर हिलाती है और अपना चेहरा नीचे कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आस्तिक को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने अरुणिमा को छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए बोला, फ्रेश होकर पार्टी में वापस आओ। ऐसा कहते हुए आस्तिक पार्टी की तरफ चला गया। अरुणिमा दौड़ते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली गई, क्योंकि ऊपर उसका पुराना कमरा था। हालांकि शादी के बाद वो यहाँ सिर्फ एक बार आई थी, लेकिन उसे कमरे का रास्ता याद था। वो दौड़ते हुए कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और दरवाजे से लगकर रोने लगी। अपने सीने पर हाथ रखकर रोते हुए वो जमीन पर बैठ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी दर्द भरी सिसकियां कमरे से बाहर ना निकले। क्यों 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 आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया? अगर आप लोगों को अपनी परवरिश का बदला लेना ही था तो मेरी जान ले लेते। इस तरीके से एक शैतान के हाथों मेरी शादी करके आपने मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दी है। मैं ना यहाँ जी पा रही हूँ ना मर पा रही हूँ, बस इंतजार कर रही हूँ एक सही वक्त का जब मौत मुझे अपनी आगोश में ले ले। अरुणिमा अपने दर्द को अकेले बर्दाश्त कर रही थी। वहीं पार्टी में घुसते ही आस्तिक की नजर पुष्कर जी पर पड़ी, जो अपनी माफिया गैंग के साथ खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। उनका चेहरा काफी सीरियस लग रहा था। आस्तिक के चेहरे पर एक तभी हुई मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उनके पास जाते हुए मन ही मन सोचता है,
बहुत कुछ खोया है मैंने इसे एक चीज को पाने के लिए, और इतने करीब आकर मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मुझे वो पावर चाहिए जो मुझे इस दुनिया पर हुकूमत करने के काबिल बनाएगी, और उसके बाद सबसे पहले उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर फेंकूंगा। लेकिन इन सब के लिए मुझे बस इंतजार करना होगा एक सही वक्त का।